ओम शांति, ओम शांति। और सभी हम यहाँ आज शुरुआत ही कहेंगे, वैसे तो इनॉग्रल हो चुका है, लेकिन हम सभी के तपने का समय अब आरंभ होने वाला है। और हम सभी को इस भट्टी में तपाने अर्थ हमारे बीच में आदरणीय अनीता दीदी जी पधारे हैं, जो चंडीगढ़ से आए हैं। इसीलिए हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि आप भी दीदी जी का स्वागत तिलक और बैज के द्वारा करेंगे। आदरणीय दीदी जी का परिचय, वैसे तो हमारे जैसे टीचर्स जो दीदी जी की ही क्लास से निकलते हैं, क्योंकि दीदी जी कोर मेंबर हैं टीचर्स ट्रेनिंग के जो मधुबन में चलती है और अभी भी चल रही है, तो दीदी जी हमारे लिए विशेष समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं, हम सबको भी अपनी वाणी का लाभ दिलाने के लिए। क्योंकि दीदी जी की वाणी में इतनी शक्ति है, जो जो भी उनके संपर्क में आता है वो उनके रंग में रंग जाता है। तो आज हम भी उनके रंग में रंगने के लिए यहाँ आए हैं, और दीदी जी से अनुरोध है कि वो अपने रंग में हमें भी रंगेंगे। और दीदी जी विशेष जो चंडीगढ़ जो पंचकुला है और ग्लोबल पीस हाउस सेक्टर 15 के आप बाबा ने आपको निमित्त बनाया है वहां की सेवाओं में, विशेष 46 इयर्स से आप इस महायज्ञ से जुड़े हुए हैं और 1987 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सिर्फ मधुबन नहीं, पूरे भारत में दीदी जी अपनी सेवाएं देते हैं। और बहुत सारे विषयों को जो आज की डेट में जो कहें बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, राइटफुल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ऐसे टॉपिक्स को आप कवर करते हैं। दीदी जी MNCs एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी अपनी सेवाएं देते हैं और बहुत सारे रिट्रीट्स एंड कॉर्पोरेट्स में भी जाकर के आप अपनी सेवाएं देते हैं। दीदी जी विशेष जो जैसा कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, शायद आपके लिए नहीं होगी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दीदी जी उसके कोर मेंबर और हम जैसे टीचर्स को आप ट्रेनिंग कराते हैं। दीदी जी कोर फैकल्टी है सोनीपत रिट्रीट सेंटर के भी, और आप टीवी चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा कहा वहां पे भी आप अपनी क्लासेस देते हैं, और विशेष ज्ञान योग भट्टी के आप ऐसे प्रवक्ता हैं जो भट्टी का जो लाभ कहें, जो तपन कहें, जो उसकी शक्ति का है, उसका अनुभव कराने के विशेष निमित्त है। तो हम भी आज इस भट्टी का आरंभ आदरणीय दीदी जी के द्वारा करते हैं। और जैसा मैंने देखा कि गूगल कह रहा है कि अनीता का अर्थ होता है दया, तो दीदी जी का नाम ही इतना सार्थक है कि दीदी जी की वाणी में वो शक्ति है, वो पावर है, वो प्यार है, वो प्रेम है, जो हम सबके बीच में आज आने वाला है। और आज का जो सुबह से कल रात से आपको एक टॉपिक मिला था, स्वमान मिला था, वो याद है क्या है? वो बीइंग लवफुल, प्यारा होना। तो दीदी जी भी इसी विषय पे विशेष प्रकाश डालेंगे कि परमात्मा प्यार का पात्र कैसे बने। तो आदरणीय अनीता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब उस डिपार्टमेंट से आए हो जिसको दुनिया में भी माया कहा जाता है। मनी मैटर्स है आप सबके पास, बाबा के पास धन को माया नहीं कहा जाता। यहाँ तो धन को संपत्ति कहते हैं, साधन या सुविधा कहते हैं, और हम तो धन वाला स्वर्ग बना रहे हैं, सोने की दुनिया। हम धन में से माया को माइनस करने वाले महान आत्माएं हैं, दुनिया को ये सबूत देने वाले हैं कि धन का दुरुपयोग माया होता है, सदुपयोग स्वर्ग बना देता है। यही करने वाले ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही वो लजते तो नहीं हो गए, झंझट तो नहीं लगता, लगता होगा, कहीं कहीं तो लगता होगा, क्योंकि कलयुगी दुनिया से निभाना पड़ता है, तूफानों में दिया जलाना होता है। रावण राज के अंदर राम राज की स्थापना कर रहे हैं तो जोर तो लगेगा ना, पर इस जोर में हम शक्ति भर लेते हैं, बाबा के प्यार की शक्ति। एक बहुत पुराना गीत है, ये कहानी है दिए की और तूफान की, लंबा गीत है, उसमें दिया जल रहा है, तूफान जोर लगा रहा है उसको बुझाने के लिए, बहुत जोर लगाता है, आखिर पैर पटक के वापस चला जाता है, दिए को बुझा नहीं सकता। उस गीत की लास्ट लाइनें हैं, क्यों नहीं बुझा दिया, क्योंकि उसके तन में अगन थी प्रभु प्यार की, उसके मन में लगन थी प्रभु के नाम की, इसलिए वो बुझा नहीं। तो प्यार में इतनी ताकत है, तूफान को भी वापस कर सकता है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, एक के प्यार में मग्न हो जाना यही संपूर्ण ज्ञान है। प्यार कोई आधा अधूरा छोटा मोटा एक अलग सा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु प्यार का दूसरा नाम है। जो सब्जेक्ट बोलो अपनी इस पढ़ाई के, सब उसके अंदर समा जाएंगे। इसलिए स्वमान भी बहुत अच्छा रखा है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा है, बीइंग लवफुल में समझना है इस बात की गहराई को कि प्रभु प्यार का पात्र कैसे बने। पात्र समझते हैं, पॉट, किसी भी प्रकार के कंटेनर को, बर्तन को पात्र कहते हैं। तो जैसी वैल्यूबल चीज होती है ना, उसके लिए वैसा ही पॉट कंटेनर चाहिए होता है। बाबा कहा करते हैं कई बार मुरली में कि बहुत कीमती हीरा रखना है तो सोने की डब्बी में रखेंगे। वो खुद अपना अनुभव सुनाते थे, बहुत कीमती हीरा आता था ना तो कपूस डाल के सोने की डब्बी में रखता था, तो डब्बी देख के ही पता चल जाएगा अंदर क्या है। ऐसे ही लिफाफे में कोई आपको पकड़ा दे, आप समझेंगे अंदर सोना चांदी होगा, सब्जी लाया होगा, फ्रूट लाया होगा। तो जैसी चीज होती है वैसा उसका कंटेनर होता है। प्रभु प्यार हमने रखना है, कहाँ रखना है, अपने अंदर रखना है, दिल में रखना है। तो ये दिल कैसा होना चाहिए जिसमें वो आकर बैठे। हमने एक बार किसी को कहते सुना था, तब से बात जम गई है अंदर। गॉड इज द ग्रेटेस्ट लवर, ग्रेटेस्ट जेलस लवर। भगवान से ज्यादा जेलसी करने वाला माशुक और कोई नहीं है। क्यों? वो जब आपके दिल में बैठेगा, अकेला बैठेगा, बहुत बड़ा आदमी है। अगर आपने पहले से किसी को बिठाया हुआ है, छोटे मोटे को, और वो भी चमड़ाधारी को, इस चमड़े में तो बदबू होती है ना, कोई चमड़ाधारी आपके दिल की सीट पर पहले से बैठा है, छोटा मोटा खोटा, चाहे आपके किसी संबंध के रूप में बैठा है, आपका बेटा बेटी बन के ही बैठा है, पर बैठा है अच्छी तरह, तो भाग जाएगा। उसको अकेली साफ सीट चाहिए, वो किसी दूसरे के साथ अपनी सीट शेयर नहीं करता है। कोई कहे बाबा आपसे मेरा बड़ा प्यार है, बस जान कुर्बान कर दूं, पर बाबा आपको भी कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा, मेरे बेटे को ठीक करके दिखाओ। लो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लैंग्वेज? कौन ज्यादा प्यारा है इस सारी भाषा में? कौन ज्यादा प्यारा दिख रहा है? सबको पता है, फिर भी ऐसी भाषा बोलते हैं ना आजकल। बहुत स्थानों पर हम इस तरह वाला योग देखते हैं। मैंने ना बेटे के लिए 40 दिन का योग रखा हुआ है। क्या रखा है? जल्दी से डॉक्टर बन जाए बस, फिर तो मैं चाहे सारा टाइम सेवा में लग जाऊं। 40 दिन योग, योग तो आप जरूर करेंगे। उस योग में आपको कौन ज्यादा याद आ रहा होगा, सोच के बताना। ठीक मनोविज्ञान का दर्शन करके, बेटा या बाबा ये भी पता है, फिर भी ऐसा करते हैं। बाबा सेकेंडरी होगा, होगा भी तो सेकेंडरी होगा। बेटा या कोई भी मनोकामना, मेरा ये वो सो हो जाए तो बाबा, बस फिर तो ब्रह्मा भोजन कराऊं। बाबा को भूख लगी रहती है, ब्रह्मा भोजन मिले, राजी होए तो अपना काम करे। ऐसा वाला नहीं। एक बात ठीक समझना इस योग में, ये योग मुरादों का मोहताज नहीं है। ये योग की सिद्धि आपकी मुरादों की, मुराद शब्द तो समझते ना, मनोकामनाएं, आपकी डिमांड्स, आपकी डिमांड्स की फुलफिलमेंट, ये कोई सबूत नहीं है आपका योग ठीक है। आप योग अच्छा लगाते इसलिए आपको जो चाहिए मिल गया, रॉन्ग। आपका योग बहुत बढ़िया था इसलिए जो काम होना चाहिए था हो गया, आपकी बीमारी ठीक हो गई, आपका कोई प्लॉट मिल गया, भले उसमें आपने सेंटर बनाया, ये काम हो गया तो माना जाए आप योगी बड़े अच्छे हो। आपकी हार्ट प्रॉब्लम थी ठीक हो गई, आपको कुछ और प्रॉब्लम थी ठीक हो गई, मान लो बड़े अच्छे योगी हो। फिर ब्रह्मा बाबा को तो ऑपरेशन कराना पड़ा था, वो बहुत अच्छे योगी नहीं थे। मम्मा को कैंसर था, मम्मा बहुत अच्छी योगी नहीं थी, उनका क्यों नहीं ठीक हुआ? ये भी हम नहीं कह सकते कि योग से समस्याएं ठीक नहीं होती होती है। ये भी हम नहीं कह सकते कि योग से कामनाएं पूरी नहीं होती होती है। सर्वशक्तिमान से योग है, छोटी बात नहीं है, लेकिन विधि को ठीक समझना है। विषय आज मिला प्रभु प्यार का पात्र कैसे बने, वो रिश्तेदारी की कहानी है। एक भक्ति मार्ग जैसा योग लगा के कुछ कमा लेना पा लेना, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छा स्पष्ट होगा। एक माता अपने पास ज्ञान में चली, पाठशाला खोली, हाईली क्वालिफाइड थी। उसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था ब्रेन में, न्यूरो प्रॉब्लम, और वो योग करते करते मिरेकुलस तरीके से ठीक हो गया। उसकी मेन आर्टरीज ब्रेन की ब्लॉक हो गई थी। उसके बॉडी पर बहुत इफेक्ट्स थे। पीजीआई चंडीगढ़, वहां जब उसके ऊपर टेस्ट हो रहा था, पूरे न्यूरो डॉक्टर्स की टीम थी, तो जो हेड था उसने अपने सारे छोटे डॉक्टर्स बुला लिए। देखो देखो देखो, देखो स्क्रीन पर, देखो देखो, वो सारी जो स्क्रीन पर आ रही थी ना पिक्चर, वो एक डेड ब्रेन की आ रही थी। इस हिसाब से ये व्यक्ति मरा हुआ होना चाहिए, और वो जिंदा बैठी थी जिसका टेस्ट हो रहा था। फिर उसने दिखाया इसके ब्रेन ने कुछ अपने आप एक्स्ट्रा आर्टरीज क्रिएट की है जिससे सप्लाई जा रही है और वो जिंदा है। तो उन्होंने तभी उसका इंटरव्यू लिया। ये मिरेकल कैसे हुआ? मेडिकली नहीं हो सकता है, किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता। इस हिसाब से आपको डेड होना चाहिए था। उसने थोड़ा सा मेडिटेशन की बात बताई, इतने साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, खुश रहती हूँ वगैरह, स्ट्रेस फ्री हूँ, मेडिटेशन सिखाती भी हूँ, उनके यहाँ क्लास चलता था। तो जब ये अनुभव उसने हमको सुनाया कि दीदी आज ऐसा हुआ बीजीआई में, तो हमने कहा अच्छा बहन, आप जिनको क्लास कराती हो ना, उनके पास क्लास में भी अच्छे वीआईपी आते थे, तो उनको ये एक्सपीरियंस सुनाना। कहती नहीं दीदी, उनको नहीं सुनाऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं सुनाओगी? कहती दीदी इससे तो हमारा राजयोग बदनाम हो जाएगा। राजयोग बदनाम होगा या नाम रोशन होगा? किससे मरे भी जिंदा होते हैं, कितनी बड़ी बात है। कहती नहीं दीदी, क्लास वाले लोग औरों को इसलिए लेकर आने लग जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बोलो, यहां बीमारियां ठीक होती हैं, खुद की भी बीमारियां आके सुनाने लग जाएंगे। दीदी आजकल ना कमर बहुत दुखती है, बता दो ना क्या अभ्यास करूं कमर ठीक हो जाए। मेरे ना हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है, आपकी ब्रेन में आई थी ना, बता दो मैं अपनी आर्टरी कैसे खोलूं। दीदी कहते वो जो हम राजयोग क्लास करते हैं ना, वो तो है आत्मा का मिलन परमात्मा से, और राजयोग का बेसिक फॉर्मूला है मिलन के लिए, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर। कहते दीदी वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, लोग फिर देह और देह के संबंधियों को याद करते हमारे पास आएंगे और हमें भी उनको ही याद करना पड़ेगा। अच्छा इस बीमारी के लिए ये कर लो। मैं कहा फिर ये माने कि आपकी आर्टरीज राजयोग से ठीक नहीं हुई है? कहती श्योरली हुई है, राजयोग से ही हुई है। मैं कहा ये फायदा औरों को भी लेने दो ना। कहते नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान से समझना इस बात को। राजयोग का लक्ष्य मनुष्य को देवता बनाना है, ना कि सिर्फ बीमारियां ठीक करना। और जब हम राजयोग के द्वारा मनुष्य से देवता बनने के सफर पर चलते हैं, जैसे यहां से अहमदाबाद जाने के सफर पर चलो, रास्ते में मेहसाना तो अपने आप आ जाएगा ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट पालनपुर मेहसाना एक्स्ट्रा टिकट खरीद नहीं करना पड़ेगा। जब आप मानव से देवता पतित से पावन बनने का सफर ठीक तय करते हो, आत्मा समझ परमात्मा को संबंधी बना करके याद करते हो, ये रिजल्ट्स तो अपने आप आ जाते। ये बीमारियां ठीक होना तो कहने लगी हमारे राजयोग की अनंत सिद्धियों में से एक छोटी उंगली के नाखून से भी छोटी शक्ति जितने से ये काम हो जाता। आपको मालूम है दुनिया में भी और बहुत संत महात्मा गुरु रिद्धि सिद्धि वाले बीमारियां ठीक करते हैं। यहां तो योग लगाओ तो ठीक होए, वो तो हाथ लगा के ठीक कर देते हैं, झूठ नहीं है। कोई थोड़ी बबूत देंगे ठीक कर देंगे, कोई गंडा ताबीज देंगे ठीक कर देंगे, तो क्या समझा जाए वो भी राजयोग का चमत्कार है? नहीं, वो चमत्कार को नमस्कार है। राजयोग चमत्कार जरूर करता है, पर ओनली बीमारियां ठीक नहीं करता। करता है, राजयोग से बीमारियां जरूर ठीक होती है, पर बीमारियां ठीक करने को ही राजयोग नहीं कहा जाता। ये आत्मा और परमात्मा के प्यारे से मिलन का, उस मस्ती में मगन होकर दुनिया भूल जाने का दूसरा नाम है। ये त्याग तपस्या का दूसरा नाम है, ये वैराग का दूसरा नाम है, आनंदमय वैराग, सुखदायी त्याग, बिना दुनिया छोड़े प्रभु प्यार। लोग भी त्याग तपस्या करते हैं लेकिन दुनिया छोड़ देते हैं, उनका रुखा सुखा वैराग होता है, खाना छोड़ देते हैं। हम कई बार हंसते हैं जब अच्छा भोजन कर रहे होते, लगभग रोज ही करते हैं, तो हम हंस रहे होते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां कुछ नहीं खाती है, इनका बहुत त्याग है, इन्होंने दुनिया छोड़ दिया है। और हमारे यहाँ जब पिकनिक होती है तो आगे देखा जाए तो, देखी हुई आप में जो पुराने हैं तो जानते हैं ना, हमारे जैसा डांस कोई नहीं करता होगा, हमारे जैसे माल पकवान कोई नहीं खाता होगा, फिर भी हमने दुनिया छोड़ी है, फिर भी हम कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि हम गलत नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने विकारों की दुनिया छोड़ी है, इसलिए आसुरी प्रभाव की दुनिया वाले कहते हैं इन्होंने हमें छोड़ दिया है, इसलिए उनको लगता है इन्होंने दुनिया छोड़ दी है। बाबा, अपना मीठा प्यारा बाबा हम सबको बहुत प्यार करता है। किस किस को अनुभव है बाबा के प्यार का, नीचे करना। किस किस को लगता है बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करना। नीचे कर। किस किस को लगता है मुझे कम प्यार करता है, आधा हाथ खड़ा हुआ है वो भी नीचे ऊपर हो रहा है। सब कहते हैं बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, पर कभी कभी शिकायत आती भी है कि बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता है, कम होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जितना कम होता है उसको कंप्लीट करने के लिए आज कुछ बात करेंगे। हम कंपेयर करते हैं हमारा प्यार किन की तरफ चले जाता है ज्यादा, उससे कंपेयर कर लो कौन लोग हमें बहुत प्यारे लगते हैं, जो वक्त पर काम आए होते हैं, जो हमारा कहना मानते हैं, जो हमारी बात किसी को नहीं सुनाते हैं, जो हमारी महिमा ही करते रहते हैं, जो हमारे सुख का ख्याल रखते हैं, हमारा जरा भी दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, हमें खुश करने में लगे रहते हैं, जो हमारा इंतजार किया करते हैं, जो हमें याद करते हैं, जो हमें कुछ दे देना चाहते हैं, जो हमारे काम आ जाते हैं, वो सब हमारे प्यार को अपनी ओर खींच लेते हैं। कहीं कहीं थोड़ा विरोधाभास है, बहुत कहीं कहीं कम जगह पर, जहां खून का रिश्ता है, कोई ऐसे रिश्ते की जंजीर बंध चुकी है जिनके लिए हम बहुत करते हैं और रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है, ये कुछ परसेंट में होता है। जैसे बच्चे बिगड़ गए, हमने तो उनके लिए हड्डियां लगा दी और वो किसी और छोकरा छोकरी के साथ भाग जाते हैं, वो काम विकार खींच कर ले जाता है उनको, दुनिया के कई आकर्षणों में चले जाते हैं। वरना तो प्यार को प्यार खींचता है, दिल को दिल से राह होती है। हमने एक जगह पढ़ा था, कल ही जैसे बहन ने टॉपिक लिख के भेजा पढ़ा, उसी टाइम मुझे वो दोहा याद आया, शायद 15-20 साल बाद याद आया होगा, बचपन में सुना था कभी। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीस दही ले जाए। प्रेम खेती में पैदा नहीं होता बाड़ी, प्रेम न बाड़ी उपजे खेती में पैदा नहीं किया जा सकता, प्रेम न हाट बिकाए, हाट कहते दुकान को, किसी दुकान पे प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, चाहे राजा हो या प्रजा, राजा प्रजा जही रुचे जिसको भी चाहिए शीस दही लगी जाए। सिर कटाना पड़ता है प्रेम सच्चा पाने के लिए, जो सिर कटाता है उसको सच्चा प्यार मिलता है, यानी प्यार कुर्बानी मांगता है, जो कुर्बान हो जाने वाले होते हैं वो प्यार की जो राहें हैं उस पर पूरा उतरते। लैला मजनू की एक कहानी इसी ज्ञान सरोवर में बहुत सालों पहले हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने सुनाई थी टीचर्स बहनों की भट्टी में, वो सुनाती हूँ आपको। प्यार के ऊपर ही सुनाई थी कि किसको कहते हैं समर्पण जीवन, प्रभु प्यार के लिए अर्पित जीवन कहते हैं। लैला और मजनू को आपस में मिलने की मनाही थी और दोनों दीवाने थे एक दूसरे के। लैला शहजादी थी, मजनू दूर एक टीले पर इस इंतजार में बैठा रहता था कब लैला थोड़ा बाहर निकलेगी और मैं उसको देख लूंगा। लैला को पता था पर कड़ा पहरा था, उसको निकलने की अनुमति नहीं थी, बहुत बेचैन थी लैला। उसको जब समझ आया कि उधर दूर एक टीले पर मजनू बैठा रहता है मेरे इंतजार में, उसने एक सेवक को बुला के एक गिलास दूध दिया और कहती है वो दूर एक टीले पर एक दाढ़ी वाला पतलू सा बैठा, उसको ये गिलास दूध दे के आना और कहना लैला ने दूध भेजा। ठीक, वो दे के आ गया। कहते कुछ बोला मजनू ने? कहते कुछ नहीं बोला, दूध पी के गिलास लौटा दिया। दूसरे दिन भी भेजा, तीसरे दिन भी भेजा, फिर पूछा कुछ बोला मजनू ने? नहीं, दूध गटक गया और गिलास लौटा दिया। लैला को बहुत डाउट हुआ, दूध पी जाता है कुछ बोलता नहीं, क्या ये चक्कर क्या है? वो तो संदेश चाहती थी, कोई संदेश आया नहीं। चौथे दिन उसने एक गिलास दूध देकर कहा कि मजनू को ये दूध देकर कहना लैला बहुत बीमार है, इस गिलास में एक गिलास खून दे दो। चला गया वो, फिर खाली गिलास लेकर लौट आया। लैला ने पूछा आपने बोला था मजनू को? ते हाँ बोला था। कहते फिर वो क्या बोला? लैला बहुत बीमार है तो? कहते वो हंस पड़ा जोर जोर से, कहता है मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूँ, खून चाहिए तो वो मजनू तो दूर दूसरे टीले पर बैठा, उससे खून मांग लो। बात समझ आई? वो नकली मजनू था, मजनू नहीं था, यूं ही बैठा था और दूध मिल रहा रोज पीने को, पी जाता आराम से, पर जब बारी आई इसके बदले में कुछ दो तो सच बोलना पड़ गया, मैं दूध पीने वाला तो हूं, खून देने वाला वो दूसरा है। अब अपने ऊपर लगाना इस बात को, हम सब बाबा के मजनू हैं, आशिक हैं। कौन से वाले? 40 दिन योग लगा के मुरादें पूरी कराने वाले हैं। बाबा ये दे दो वो दे दो, ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो। कोई कोई तो भक्ति मार्ग की तरह ये तो नहीं बोलते बाबा आपको तब मानू जब ये काम कर दो। हम दूध पीने वाले मजनू हैं या खून देने वाले मजनू हैं? कौन से मजनू हैं? प्रभु प्यार का पात्र कौन जो प्रभु के नाम पर कुर्बानी करना जानता है, जो उसके नाम पर देहभान का त्याग करता है, लोक लाज कुल मर्यादा का त्याग करता है, इंद्रियों के रस का त्याग करता है उसके नाम पर और सहज सहज कर देता है। लोग क्या बड़ी बात है ये चीजें निकाल, ओके एक गई, एक सेकंड में पवित्र रहना, ओहो भगवान मिले। कहते शीश दही मिले भगवान तो सस्ता जान, सिर कटाने के बाद भी भगवान मिले ना तो सस्ता जान। या तो खुदा के मिल गया, शीश कटाना नहीं पड़ा, पर शीश कटाने से बड़ी बात बोलता है। दे अभिमान का सिर काट दो तब मिलूंगा, मींस मिलन का अनुभव कराऊंगा, घड़ी घड़ी साथ का अनुभव होगा, उसके लिए दे अभिमान का सिर कटाने की जरूरत है, उसके लिए पूंछ जलानी पड़ती है, मेरे मेरे की पूंछ को आग लगानी पड़ती है, पूंछ कटा बंदर बनना पड़ेगा, मेरे मेरे की आग, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। ये मेरेपन का जो त्याग करता उसको ऐसा लगता है कि मैं बाबा को याद नहीं करता हूं, बाबा मुझे याद करता है। प्रभु प्यार का पात्र माना क्या, ऐसे नहीं योग लगाने में जोर लगे, भुलाने में जोर लगे। पहले समझते थे याद करना मुश्किल है, अब भुलाना मुश्किल लगे। ये नहीं कहती हूं कि सबको भुलाना मुश्किल लगता है, नहीं लगे। इसलिए कुर्बानी सबसे बड़ी है, देहभान की कुर्बानी, देहभान की कुर्बानी दे करके हमें निरक्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही होकर रहने के लिए देहभान का त्याग करके, निरक्रोधी होकर रहने के लिए, निर्मोही निर्लोभी होकर रहने के लिए निर्दोष वृत्ति धारण करनी है। क्योंकि एक बात समझ में आई कि बाबा से अगर प्यार लेना है तो बाबा के प्यारों से बहुत प्यार होना चाहिए। अगर उसके प्यारों से हमें नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है, उसका प्यार अंदर ठहर नहीं सकेगा। बाबा प्यार का सागर है, वो एकदम पतित से पतित आत्मा को भी मिलता है ना, चोर डाकू जैसी बिल्कुल पतित काली आत्मा भी हो गई और बाबा के सामने आए, बाबा क्या बोलेगा उसको, मेरे खट्टे कड़वे बच्चे बोलेगा, उसको भी क्या बोलेगा, मीठे बच्चे। बाबा की आंखों में वो देखेगा तो उसको बाबा की आंखों में धर्मराज दिखेगा या बाप दिखेगा। हम सब भी तो पुरानी दुनिया से मैले होके बाबा के सामने आए थे। जब भी पहली बार बाबा से नजर मिलाई, एकदम मैले थे हम सारे। जैसे ही नजर मिलाई क्या फील किया, बाबा मेरा है, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। एकदम प्यार ने खींच लिया, कोई कड़वा कोई खट्टा कोई कांटा कोई एकदम कामी कपटी बाबा ने नहीं देखा, मेरा मीठा बच्चा ये देखा। अब हम चाहते हैं बाबा मेरे को हमेशा प्यार करे, और बाबा के बाकी सारे भी मीठे बच्चे हैं। मैं कहूं बाबा आप तो बहुत प्यारे हो, पर आपके अलावा ये जो बाकी सारे हैं ना, पता नहीं कैसे ब्रह्मा कुमार बन गए। कोई कोई बोल देते हैं ना, इनको भगवान ने चुना है, अच्छा ये तो बीके बनने लायक ही नहीं है, ब्राह्मण होके ऐसा करते हैं, बाबा का बन के ऐसा करते हैं। बाबा की सिलेक्शन पर डाउट करते हो, बाबा के चुनाव से गलती निकालते हो, बाबा से गलती हो गई इसलिए उनको अपना बच्चा बना लिया। चलो कोई नए भी बने हुए हैं फिर भी उसकी संतान है। जितना दूसरों का दोष दिखता रहेगा, अंदर चलता रहेगा, वर्णन में आता रहेगा, कभी योग लग नहीं सकता है, बाबा का प्यार खींच नहीं सकता है। क्योंकि दिल मैला होता रहेगा इसके उसके कमजोरियों के चिंतन में। जैसे बाबा है, बाबा एक स्टेज पर स्थित है इसलिए वो भगवान है। ही इज ऑलवेज नॉन जजमेंटल, ऑलवेज साक्षी दृष्टा, वो हर एक के पार्ट को जानता है। भले कहता है जानी जाननहार नहीं हूं, पर जानी जाननहार है कि नहीं बाबा, बताओ, है ना, कोई डाउट थोड़ा ही है, पक्का जानी जाननहार है। हम सब के सब जन्मों के हर सेकंड की सारी कहानी जानता है, ऑलरेडी जानता है। इसलिए बैठ के स्पेशल उसको आपका थॉट पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए बोलता है मैं थॉट रीडर नहीं हूं, क्योंकि ये क्लेरिकल जॉब है, प्रेसिडेंट क्यों करे? क्लेरिकल जॉब है ना, थॉट बैठ के पढ़े ये क्या सोच रहा है, ऑलरेडी सारी बायोग्राफी जानता है, और बैठ करके एक एक को रीथिंक करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जानने के बावजूद भी सबके लिए प्यार का सागर होकर रहता है ऑलवेज, क्योंकि नॉन जजमेंटल स्टेज में रहता है। फाइनल जस्टिस है, सुप्रीम जस्टिस धर्मराज है, लेकिन धर्मराज बनने से पहले लगातार किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं करता रहता है। ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेजफुल है, तो हमको भी एक नॉलेजफुल की स्टेट ऑफ माइंड पर स्थित होकर के जानकारी रख ली है। पहले से ही जानते हैं कलयुग का अंतिम जन्म है, कोई संपूर्ण नहीं बना, जिसमें आज अच्छाई दिखती है उसके पीछे भी बहुत सारी बुराई है, जिसमें आज बुराई दिखती है उसके पीछे भी बोलो आगे बहुत सारी अच्छाइयां है। इसलिए जो सरफेस पर है वो फाइनल नहीं है, जो बहुत सारी बुराइयां अच्छाई के पीछे है वो कल पलटी खा सकती है, जो बहुत सारी अच्छाइयां बुराई के पीछे है वो भी कल पलटी खा सकती है। इसलिए जजमेंट निकालने का कोई लाभ नहीं है, तो निर्दोष वृत्ति पर रहना है। नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड बाबा का प्यार खींच सकती है, क्योंकि ये निर्दोष वृत्ति आत्मा को अपने ऊपर दोष लेने नहीं देती, मैल लगाने नहीं देती है। जैसे एक भक्ति की भी रस्म है, एक मूर्ति तक भी आपको जाना है, नहा धो के साफ कपड़ा पहन के जाओ, चमड़े का कुछ पकड़ा हुआ नहीं हो, छिलका भी प्याज का वहां पर नहीं हो, धूल मिट्टी भी नहीं हो, तब आपकी पूजा सफल होती। एक पत्थर की मूर्ति का इतना रिस्पेक्ट है, सब कुछ इतना साफ चाहिए, और फिर पवित्रता का सागर बाबा मुलाकात करनी है उसने हमारे से, तो मन में किसी के लिए मैल नहीं चाहिए। काम विकार कहते हैं हम, बाबा से मिलने नहीं देता है, या जीवन काम हवाले या जीवन राम हवाले, तो बाबा यहां तक कहते किसी की बुराइयां याद करना भी काम विकार है, ये भी अपवित्रता है। आप फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हो तब तो सवा सत्यानाश। एक तरफ देहधारी का आकर्षण, नाम रूप की कहानी भी पकड़ी है, फलाने फलाने का चमड़ा बड़ा पसंद आ रहा है, उसको चमड़े के रूप में टच करने का दिल कर रहा है, उस रूप से उसको याद कर रहे हैं, फिर कहे बाबा के प्यार में मगन हो जाऊं, सपने लेते रहो, नहीं हो सकेंगे, नॉट एट ऑल। ऐसे लोगों का योग होगा, अभी उड़ने लगे धड़ाम नीचे, अभी उड़ने लगे धड़ाम नीचे, एक संकल्प बाबा, दूसरा संकल्प कारोबार खींचेगा, एक बार फील होगा बाबा अब कितने मीठे प्यारे, मैं भी फरिश्ता बन के आ रहा हूं सूक्ष्म वतन में, प्लेन रास्ते से गिर जाएगा, सूक्ष्म वतन के बीच में ही कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई घर का काम दिखने लग जाएगा, आपकी फ्लाइट वापस, बाबा आओ ना, आज बड़ा मन उदास है, फलाने ने इतना बोला, मैं 10 साल से आपका ज्ञान लिया, क्या फायदा बाबा, मदद करो ना, पुकारे जाओ, नहीं आएगा बाबा, बाबा नहीं आएगा। बाबा गॉड इज द ग्रेटेस्ट, बोलो आगे, जेलस लवर। अपने चित्त में किसी और चमड़ाधारी को बिठाया है और उसको मेरा और मेरी कह रहे हो, और बार बार कह रहे हो तेरे बिना जिया नहीं जाता, तो जी लो उसी के साथ। स्पष्ट बोलना चाहिए ना मेरे को, भारी तो नहीं लग रहा, क्लियर कट बोल रही हूं। इसलिए प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा पर जा जही रुचे, शीस दही लही जाए, शीस काटो, अभिमान का, काम विकार का, दोष वृत्ति का, क्रोध का, शीश काटो दिल में बैठ जाएगा, यादें सताने लगेंगी, कहेगा यहीं रहूंगा, जाता ही नहीं हूं, तेरा दिल बड़ा साफ है बच्चे, यहीं बैठता हूं। यादें स्टीरियोटाइप नहीं चाहिए, रटी रटाई कमेंट्री वाली यादें नहीं चाहिए। कोई कोई पूछते हैं, दीदी ये वाला योग कैसे करते हैं, फरिश्ता वाला, ये वाला कैसे करते हैं, चार धाम वाला? अरे कभी नहीं पूछा बेटा, स्कूल गया हो तो कैसे याद करते हैं, लंदन गया हो तो कैसे याद करते हैं, लंदन गया हो तो कहते लंदन याद आ जाएगा। अरे तुम तो लंदन कभी गए नहीं, देखा नहीं, नहीं नहीं कल्पनाओं में याद आ जाता, कल्पना कर लेता है मन प्यार के कारण। प्यार में किससे कहानियां गढ़ देते हैं लोग, प्यार में दृश्यों का निर्माण कर लेते हैं, प्यार में कल्पनाओं में खो जाते हैं। एक बार मजनू दौड़ा जा रहा था लैला से मिलने के लिए, रास्ते में एक मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, उन्होंने चादर बिछाई हुई थी, मजनू का पैर मौलवी जी की चादर पर पड़ गया। मौलवी जी को बहुत गुस्सा आया, रुको, तुमने अपना नापाक पैर मेरी पाक चादर पर रखा है, अल्लाह ताला खौफ करेगा। मजनू डर गया, डर के कहता मौलवी साहब मैं तो अपनी लैला के प्यार में मगन था, मुझे आपकी चद्दर नहीं दिखाई दी, माफ करना, एक बात बता दीजिए, आप उस अल्लाह ताला के प्यार में मगन थे तो आपको मेरा पैर कैसे दिखाई दे गया? प्यार में मगन वाले को दूसरे की बुराइयां वैर विरोध नहीं दिखाई देता, तेरे में मैं दिखाई देता है, यानी तेरा सुख मेरा सुख, तेरा भला मेरा भला, हर एक का भला हर एक का गुण, जैसे मेरा गुण मेरा अवगुण दूसरा उच्चारण करे मुझे पसंद नहीं आएगा ना, तो दूसरे का अवगुण मैं उच्चारण करूं अपने को पसंद नहीं आना चाहिए। मस्ती क्या चीज होती है, मस्ती, ये मस्ती चढ़ी रहे तो अवगुण दृष्टि समाप्त हो जाती है, और अवगुण दृष्टि समाप्त हो तो मस्ती चढ़ती है। एक मयान में दो तलवारें नहीं रहने वाली है, पर चिंतन और प्रभु चिंतन दो शत्रु है आपस में, दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। और स्पष्ट शब्दों में बोलती हूं, बाबा के प्यार को खींचने के लिए खींचना होता है पहले। बाबा सारे संसार का पिता है, सारे संसार का माशूक है, पर मैंने कुछ ऐसा करना है कि सारे संसार से नजर हटके उसकी मेरे ऊपर आ जाए, वो मुझे करना है कुछ ऐसा। कहते हैं हनुमान ने देखा, सुना आप लोगों ने, फिर भी सुनाऊंगी आपके अंदर वो भाव जगाने के लिए। सीता माता यहां सिंदूर लगा रही थी, हनुमान ने देखा, माता जी ये क्या कर रही हैं आप, बालों में लाल लाल क्या लगा रही है, उसको क्या मालूम ये सिंदूर विंदूर क्या होता है, फिर बालों में लाल लाल क्या लगा रही है। सीता माता कहती सिंदूर होता है, वो फिर भी हनुमान भोला हैरान हो रहा, ये बालों में क्यों लगा रही है, कहते ये सुहाग की निशानी होती, वो क्या होता है, इससे सुहाग प्रसन्न होता है, कहते वो क्या, कहते राम जी खुश होते हैं मैं सिंदूर लगाती हूं तो। अच्छा राम जी ये लाल सिंदूर लगाने से खुश हो जाते हैं, फिर इतना चुटकी भर क्यों लगा रही हो माता, उनको खुश करना है तो पूरा लगा दो, बोरी भर के सिंदूर लाया सारे पे लपेट लिया, राम जी खुश हो जाएंगे, आप पे खुश होते चुटकी भर से, मैं तो पूरा ही लगा लिया। जिस बात से जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। वफादारी जो तुझको पसंद है बस वही बोलेंगे, वही देखेंगे, वही खाएंगे, वही सुनेंगे। तुझको पसंद नहीं है मैं रेडीमेड खाऊं तो कैसे चॉकलेट खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कैसे कभी बाहर गए तो कोई कोई कहते हम भोजन की पूरी शुद्धि रखते हैं, बस कहीं शादी वादी में जाना पड़ता ना तब खा लेते। अच्छा यहाँ प्याज लहसुन वाला, हाँ जी दीदी खाना पड़ता है। ये पड़ता वाली भाषा हमें आज तक समझ नहीं आई, कितना प्राइवेट सा मुंह है बेचारा, बिल्कुल पर्सनल लगा हुआ है, कौन ठूसता है इसमें, अपना ही हाथ यहाँ तक जा सकता है। कहते खाना पड़ता है, मुझे कभी समझ नहीं आया पड़ता क्या होता है। मुझे तभी एक ही सीन बनता है कि 10 लोगों ने आपको लिटा दिया और जबरदस्ती आपके मुंह में डाल रहे, वरना कोई पड़ता वाली भाषा। इट्स योर चॉइस ओनली, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। और डिसीजन अगर ढीला हुआ, उसका प्यार ढीला हुआ, ये ना नाराज हो जाए वो बेशक हो जाए, बाबा तो भोला अब नहीं है मान जाएगा बाद में, कोई बात नहीं। बाबा रूठता नहीं, डांटता नहीं, डायरेक्ट आके नहीं जो तुझको हो पसंद, तुझको पसंद नहीं मैं देहधारी पे आंख लगाऊं उसको याद करूं, कर नहीं सकती। एक तरफ देहधारी को मैसेज हो रहे हैं आई लव यू, फिर उसको बोलो आई लव यू, वो कहेगा ठगी क्यों करते हो भाई, ठगी नहीं चलेगी उसके दर पर, बहुत स्पष्ट बोल रही हो। इसलिए टेक इट सीरियसली। वो कहता है रिमेंबर मी अलोन, मन मना भव माम एकम, केवल एक मुझे याद करो, बाकी सब के लिए कहता है हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। मुरली में कहता है बाबा अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यहाँ मरे मीन्स क्या और हलवा मीन्स क्या? डिटैचमेंट। निर्मल शांता दादी ने एक बार बहुत मजेदार बात सुनाई थी। दादी कहती जसोदा माता ने शरीर छोड़ा, दादा लेखराज की लौकिक युगल, तो दादी कलकत्ता में थी, बाबा ने पत्र लिखा दादी को, बच्ची निर्मल शिव बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तेरी अम्मा थी मेरी बीवी थी, मर गई दोनों हलवा खाएंगे। इतनी मानसिक तैयारी करनी है, कोई रहे कोई जाए फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कोई के शरीर छोड़ने पर जाके हलवा बनाने लग जाना कि हमारी मुरली में आता, वो तो मालूम है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि अंदर से पहले मैं कुर्बान, मैं तैयार, एक कदम बच्चे तुम्हारी हिम्मत का, 100 कदम बाप की मदद के। पहले हिम्मत चाहिए मेरी, देहभान का सिर कटाने की हिम्मत, उसके लिए अभ्यास। बार बार देह का वस्त्र उतार कर अशरीरी होकर आत्म समझ एक परमात्मा को अंदर की आंख से देखना, अशरीरी होने को एंजॉय करना, एंजॉयमेंट बॉडीलेस फीलिंग, उसमें हमें मनोरंजन फील हो, रियली हम उसमें फील कर पाए मैं आत्मा, शरीर के भान के बिना वाली अकेली ज्योति आत्मा, मैं सुख और आनंद से भरपूर हूं। वाह मजा आ गया, जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन पिकनिक डांस करके बीके भी बोलते आज तो मजा आ गया, ऐसे ही अशरीरी होके अंदर से आवाज निकल आज मजा आ गया। बस अब वो प्लॉट जिस पे केस चल रहा है नहीं मिले चलेगा, मजा आ गया। बेटा लंदन से आना था नहीं आए ना आए बाबा तो है ना, मजा आ गया। फलाने साधन आपको नहीं मिलने वाले हैं, प्रमोशन आपको जो होने वाली थी, आप MD बनने वाले थे, नहीं होने वाली, ओके 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 किसी और को दो, चाहिए नहीं। बाबा मिला, मजा आ गया, चाहिए नहीं, ऐसे अंदर से निकलेगा। जैसे कोई कहे ना रसगुल्ला बहुत पसंद, उसको बोलो इधर आ बैठिया खा रसगुल्ला, 1, 2, 3, 4, 15, 20, 50 खा और खा और खा, क्या बोलेगा? ओके, अब सारी उम्र नहीं खाना है, पूछो और खाना है, शाम को पूछ और खाएगा रसगुल्ला, बस करो और नहीं चाहिए। तो ये देह से न्यारी अवस्था, आत्मिक स्थिति, जहां हम देह को पिघला हुआ महसूस करते, चमड़ा पिघल गया, पांच तत्वों में समा गए, है नहीं, मिट्टी की पहचान भी गायब है, स्त्री है पुरुष है कौन सा शरीर है गायब है, बिंदी हूं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, आत्मा हूं, शुद्ध हूं, आत्मा हूं, शक्तिशाली हूं, आत्मा हूं। जैसे ये फील करते जाएंगे ना, धीरे धीरे ऐसे लगेगा अंदर खुशी के बाजे बजते हैं। शास्त्रों ने इसको कहा है अनहद नाद बजता है, अमृत की बूंद टपकती है, सारा हठ योग, इतनी लंबी चौड़ी स्टडी है, ये उसका लास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं। 10वां द्वार खुलता है, सहस्त्र दल कमल चक्र खुल जाता है, अमृत की बूंद टपकती है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, अनहद नाद बजता है, उसके बाद दुनिया नहीं चाहिए, जंगल त्याग वैराग, ये हठ योग की लास्ट स्टेप है, जहां सोल कॉन्शियसनेस का वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यहां हठ योग एंड होता है और हमारा राजयोग यहां से 10वें द्वार से शुरू होता है, जहां अनहद नाद बजता है। अनहद नाद तो समझ गए होंगे ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो है अनहद नाद, कोई म्यूजिक नहीं है, बैंड बाजा नहीं है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक रिदमिक फीलिंग ऑफ अटेनमेंट, पा लिया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये वाली फीलिंग, ये फीलिंग लगातार मिलन की फीलिंग में ले जाती है। इसलिए समझदार योगियों को, हम योगी हैं, गृहस्थी वृस्थी फाइनेंशियल प्रोफेशनल भूल जाना जरा, हम योगी हैं, योगियों को दुनियावी प्राप्तियों से ज्यादा जोर लगाना चाहिए इस मिट्टी को भूलने का, क्योंकि आप जितनी मर्जी लिस्ट बना लो संसारिक प्राप्तियों की, टॉप क्वालिटी सब कुछ आपको मिल भी जाए, आज आप देश के प्रेसिडेंट बन जाओ, अमेरिका का राज भी आपको मिल जाए, सबसे बड़ी दौलत पोजीशन मिल जाए, खुशी नहीं आ सकती, खुशी नहीं आ सकती। आनंद तो बड़ी दूर की बात है, जब तक सोल कॉन्शियसनेस की हाइट्स नहीं पकड़ी है खुशी नहीं आ सकती। यह आत्मा का विषय है, आत्मा के 7 गुणों में से आप देखो, प्रेम, सुख, आनंद, ये वाले जैसे राइट ब्रेन सब्जेक्ट होता है, आत्मा की क्रिएटिव एनर्जी का सिंबल है, जिसमें खुशी समाई है, प्रेम सुख आनंद, लोग प्रेम के पीछे पागल होकर डूब मरते हैं, उनको लगता है इसमें ज्यादा सुख है। तो इसको हमें एक्सपीरियंस करने के लिए एक दिन में बार बार शरीर का कपड़ा उतारने की प्रैक्टिस करनी है, नंगे हो जाना है, ने प्लस अंगे, विदाउट फिजिकल ऑर्गन्स, नंगी आत्मा आई थी, अकेली ज्योति, नंगी जाएगी, मीन्स शारीरिक पहचान अंदर रजिस्टर ना हो। शारीरिक पहचान 1,00,000 प्रकार की होती है देवान के रूप में, सिर्फ मैं शरीर हूं उतना नहीं, हम राजपूत होते हैं, हम जी राजस्थानी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बानिया होते हैं, मैं ऑफिसर हूं, साइंटिस्ट हूं, मैं इसके इतने बच्चों का बाप हूं, क्या समझा मेरे को, 60 साल हो गए ये काम करते, कच्ची गोलियां नहीं खेल, दे भान रजिस्टर है, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, दे भान रजिस्टर है अंदर, छोटा बड़ा काला गोरा नेशनैलिटी, ये रजिस्टर है, ये सारे जाले उतारने हैं। नहीं हो तुम, ये वस्त्र है, ये नकाब है, तुम नंगी आत्मा हो, इस सारी पहचान के वस्त्र के बिना वाली। शंकर हमारा स्वरूप है, ये शंकर कर्मातीत अवस्था का प्रतीक है। तीसरी आंख खोलता है, दुनिया को आग लग जाती है, उससे पहले दिखाया तीसरी आंख खोली, कामदेव भस्म हो गया। शंकर अलग से तो नहीं कुछ होता ना, हमारी तपस्या का यादगार है, कपड़ा नहीं पहनता है, शमशान पे बैठा है, यानी शरीर भी मेरे लिए मर गया नंगा, बाकी सारे भी मर गए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड, थर्ड आई ऑफ विजडम 100% ओपन। थर्ड आई ऑफ विजडम क्या कहती है? आत्म ज्योति जगती रहे। तो बार बार एक्सपीरियंस करना है। इसके लिए मुझे जिस चीज ने बहुत हेल्प किया है वो बताती हूं, कैंडल लाइक मेडिटेशन। कैंडल लाइक मेडिटेशन क्या होता है? मोमबत्ती जलती है, ऊपर फ्लेम होती है, नीचे उसकी स्टिक होती है, उसको इग्नाइट करो, फ्लेम जलाओ, तो जैसे ही वो ज्योत जलेगी मोम पिघलना शुरू हो जाएगा, वो स्टिक छोटी होने लगेगी, छोटी होते 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 लास्ट में स्टिक गायब है, थोड़ा सा लिक्विड है, बहुत थोड़ा सा, वो भी कई बार मर्ज्ड होता है, अकेली फ्लेम जल रही है, थोड़ा सा उसके अंदर अंदर छिपा हुआ मोम बाकी है। ऐसी फीलिंग बार बार लेनी चाहिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ब्रेन के अंदर, माथे से 2.5 इंच अंदर, यहां से भी 2.5 इंच अंदर, पूरा ब्रेन के सेंटर में मैं डिवाइन स्टार, छोटा सा तेज चमकता बिंदु, मेरी लाइट पूरे ब्रेन के साथ साथ फील करो, मेरी लाइट पूरे ब्रेन में गई। कौन कौन फील कर रहे हैं गई? सब भी करो। यहां से 2.5 इंच अंदर छोटा सा डिवाइन स्टार, अभी ऐसे ही बैठेंगे आत्मिक स्वरूप में, फील करेंगे, आंखें खोल दें, ब्रेन के अंदर देखें स्टार। किस किस को दिखने लगा, किस किस को नहीं दिख रहा? दिखना मीन्स टू विजुअलाइज। दिखना ऐसा नहीं कि जैसे आंखों से सब कुछ दिख रहा है, कोई नए होंगे शायद, दिखना मीन्स है समझ की आंख से विजुअलाइज करना, बुद्धि से चित्र बनाना। जैसे सोचो यहां बिंदी लगी है, ये लगे बिना भी मैं सोच के देखूं तो फील होगा जैसे कि लगी हुई है, अंदर की आंख देख लेती है। ऐसे फील करेंगे माथे से 2.5 इंच अंदर, यहां से 2.5 इंच अंदर, इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन डिवाइन स्टार तेज चमक रहा है, स्टार की लाइट पूरे ब्रेन में फैल रही है, ब्रेन धीरे धीरे मेल्ट हो रहा। फील करने की कोशिश करें, जैसे सिर के 5 तत्व 5 तत्वों में समा गए, एक लाइट की आउटलाइन बची, उसके बीच में स्टार चमक रहा है। लाइट दोनों बाजुओं को पिघला रही है, दोनों आर्म्स के 5 तत्व 5 तत्वों में समा गए, बाजुओं की जगह बस लाइट बची, हड्डी मांस खत्म। स्टार की लाइट फ्लेम हूं मैं, मेरी हीट लाइट नीचे जा रही है, नेक मेल्ट हो रही है, हार्ट लंग्स स्टमक पिघल पिघल कर पांच तत्वों में समा रहे हैं। एक लाइट की शेड बची, स्टार की लाइट दोनों लेग्स में जा रही है, लेग्स मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, तत्व तत्वों में समा रहे हैं, घुटने से नीचे पैरों तक तत्व तत्वों में समा गए। लाइट की दो लाइनें बची, ऊपरी भाग में मैं तेज चमकता सितारा, पवित्र सितारा, शुद्ध हूं, शांत हूं, शक्तिशाली हूं। ये लाइट का घेरा भी समाप्त हो गया, अकेला ब्राइट स्टार चमक रहा हूं, शांत पवित्र शक्तिशाली। फ्लाई करता हूं, हल्का हूं, किरणें फैलाता नीले आसमान से ऊपर जा रहा हूं, ब्राइट स्टार ये हूं मैं, अमर आत्मा। ऊपर जा रहा हूं, नीला आसमान क्रॉस करता हूं, सितारों के देश में पहुंचता हूं, लाल देश, ब्रह्म तत्व का देश, गहरी साइलेंस, सामने शांति सागर, मेरे संग करोड़ों शांत सितारे, मेरे ऊपर फोकस से शांति सागर। मैं तेज चमकीला सितारा, शांत शांति सागर से शांति समाता, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहा हूं। शुद्ध आत्मा हूं, गहरा शुद्ध प्योर फ्लॉलेस डायमंड। सामने है पवित्रता के सागर, ज्योतिर्मय भगवान, महाज्योति सा बिंदु। मैं बिंदु शक्तिशाली हूं, शक्तिपुंज। सामने सर्वशक्तिमान भगवान सत्यम शिवम सुंदरम। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही है। प्रेम के सागर मेरे ज्योतिर्मय बाबा, किरणों से मुझ सितारे को छूकर प्यार में समा रहे, प्यार का सागर तरंगे फैल रही हैं उसकी दूर दूर तक। मुझ बिंदु में प्यार समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। सिंधु को देख रहा हूं, मुझ बिंदु में भी सिंधु समा रहा है। प्यार का सागर छलक रहा है, छू रहा है मुझ बिंदु को। कितना अपार सुख है इस मिलन में। मैं बिंदु बन महाबिंदु को देख रहा हूं। यही है जिसे दुनिया ढूंढती है, यही है त्रिलोकीनाथ, यही है मेरा बाबा, यही है आप ही हो बाबा मेरे। आनंद के सागर, परम आनंद देने वाले, मैं अकेला बिंदु आपके किरणों की बरसात में डूबता जा रहा हूं। तुम ही हो बस मेरे। इसके बाद कुछ और चाहिए नहीं। कितना गहरा सुकून है आपके मिलन में। बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, अशरीरी बिंदु बन चले वापिस नीचे की ओर, प्रकाश का शरीर धारण करे सफेद बादलों पर, सूक्ष्म वतन के बादलों की जमीन पर मैं चमकीला बिंदु लाइट के शरीर में अपने बाबा को प्रकाश की काया में सामने देखता हूं। ब्रह्मा की आंखों से झांकते ज्योतिर्मय शिव बाबा, प्यार का सागर मुझे प्यार से छू रहा है। फील करें उस प्यार के सागर का स्पर्श, उसके लाइट के हाथ हैं, लाइट की आंखें हैं। सागर से गहरी आंखों से कैसे मुझे देखता है, जैसे मैं ही हूं उसके लिए। बस लाइट के हाथों से कितना स्पंदन है इसमें। सिर पर हाथ रख देता है, प्यार करता है, कभी पीठ पर, कभी गालों पर। मैं बिंदु प्रकाश के शरीर में छोटा बेबी, जैसे मां की गोद में। महाज्योति बिंदु, उसकी किरणों की बाहें, ममता की गोदी। मैं पवित्र फरिश्ता ब्रह्मा मां की गोदी में हूं, शिव बाप के कंधे पर हूं, मां बाप के संग झूला झूल रहा हूं, बेबी एंजल। बादलों की जमीन पर झिलमिल किरणों के साथ भगवान मां बाप के साथ झूला झूल रहा। जाए साकार में पांडव भवन बाबा का कमरा, गद्दी पर बाबा, सामने में मासूम पवित्र बच्चा, देही अभिमानी हो, बाबा से मुलाकात, किरणों की बरसात, प्यार से बाबा टोली खिला रहे। वाह, स्वर्गिक स्वाद, परमानंद, इंद्रियातीत अनुभव। देखें देहभान से मुक्त, देही रूप में बाबा से मिलन मनाते बाबा के कमरे में। यहां पर मस्तक सितारा होके चमके, पूरी देह में फैला प्रकाश, सामने बादलों में दिखते बाप दादा, उनसे झरता प्यार का झरना। ओम शांति। मुख्य बात है अभ्यास, 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 अभ्यास। अंतर्मुखी हो, जितना भीतर जाते जाएंगे, इंद्रियों को समेटते जाएंगे, उतना इस अपार रस को पाते जाएंगे। बहुत दिल की हमारी कामना है, सब इस प्यार के सागर में सदा डूबे रहें। ओम शांति।